हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद पंचमो अध्याय श्लोक संख्या 17। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्व परान्तिकम्। धर्मः प्रोचितके तवोथ परमो निर्मत्सराणां सताम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परै ईश्वरः, सद्यो हृद्यवरुध्यति त्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादम्बितत्रव संयुतम्, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भाविका। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्टिके। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं, भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। पहला स्कंद पांचवा अध्याय श्लोक संख्या 17। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। नारद मुनि आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं अपने शिष्य वेद व्यासी को। वे कहते हैं त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणं भुजं हरि भजन् अपकोतपतितो यदि यत्र कवा भद्रमा भूदमुष्य किं कुवार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणं भुजं हरि भजन् अपकोत पतितो यदि यत् कवा भद्रमा भूदमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणं भुजं हरि भजन् अपकोत पतितो यदि यत्र कवा भद्रमभूष अभूदमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणं भुजं हरि भजन् अपकोत पतितो यदि यत्र कवा भद्रमा भूदमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणं भुजं हरि भजन् अपकोत पतितो यदि यत्र कवा भद्रमा भूदमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणं भुजं हरि भजन् अपकोत पतितो यदि यत्र कवा भद्रमा भूदमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणं भुजं हरि भजन् अपकोत पतितो यदि यत्र कवा भद्रमा भूदमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः शब्दों का अर्थ त्यक्त्वा अर्थात त्याग कर स्वधर्मम अर्थात अपने वृत्ति परक कार्य को चरणम भुजम अर्थात चरण कमलों हरे अर्थात हरि या भगवान श्री कृष्ण के भजन यानी भक्ति के दौरान अपक्व अर्थात कच्ची या अपौड़ अथ के लिए पतित यानी गिरता है ततः उस स्थान से यदि यदि यत्र जहां क्व जिस तरह का वा यानी व्यंग से अभद्रम प्रतिकूल अभूत होगा अमुष्य उसका किम कुछ नहीं कवार्थ क्या लाभ है आप्त अर्थात प्राप्त किया हुआ अभजता यानी अभक्तों का स्वधर्मतः अपनी वृत्ति में लगे रहकर अनुवाद जिसने भगवत भक्ति में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों यानी कर्तव्यों में पूर्णतया रत क्यों न रहे, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जहाँ तक मानव जाति के कर्तव्यों का संबंध है, उसके कर्तव्य असंख्य हैं। प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपने माता पिता, कुटुंबियों, समाज, देश, मानवता, अन्य जीवों एवं देवी देवताओं के प्रति कर्तव्यबद्ध है, अपितु महान दार्शनिकों, कवियों, वैज्ञानिकों के प्रति भी है। शास्त्रों का मत है कि मनुष्य ऐसे सारे कर्तव्यों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। अतः यदि कोई इस तरह से करता है और यदि भगवान की भक्ति करने में सफल हो जाता है तो यह शुभ ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य क्षणिक भाव आवेश में आकर भगवान की सेवा में समर्पित तो हो जाता है, लेकिन अंत तक किन्हीं न किन्हीं कारणों के या कुसंग तावश सेवा मार्ग से च्युत हो जाता है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। भरत महाराज को एक मृग के प्रति आसक्त होने के कारण मृग का शरीर धारण करना पड़ा। जब वे मर रहे थे तो मृग के विषय में सोच रहे थे, अतएव अगले जन्म में वे मृग बन गए। लेकिन वे अपने पूर्व जन्म की घटना को भूले नहीं थे। इसी प्रकार शिव जी के चरणों के प्रति अपराध करने के कारण चित्रकेतु का भी पतन हुआ, लेकिन तो भी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने पर यहाँ बल दिया जा रहा है, भले ही इसमें से नीचे गिरने का भय बना रहता है। क्योंकि यद्यपि मनुष्य भक्ति कार्यों से नीचे गिरता है, लेकिन वह भगवान के चरण कमलों को कभी भी नहीं भूलता। एक बार भगवान की भक्ति में लग जाने पर वह सभी परिस्थितियों में उनकी सेवा में बना रहेगा। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि किंचित भक्ति मनुष्य को अत्यंत घातक स्थिति से बचा सकती है। इतिहास में ऐसी घटनाओं के अनेक उदाहरण हैं। उनमें से अजामिल एक है। अजामिल अपने प्रारंभिक जीवन में भक्त था, किंतु युवावस्था में वह भक्ति से च्युत हो गया, तो भी भगवान ने अंत में उसकी रक्षा की। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मोकं कुरु तु वाचालम् पंघुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद पांचवा अध्याय, जिसका शीर्षक है श्री नारद द्वारा वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवतम का उपदेश देना। आज नारद जी वेद व्यास जी को अत्यंत ही सुंदर बात बता रहे हैं, क्योंकि वेद व्यास जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे और वो संतुष्ट नहीं थे, तो नारद जी उन्हें बता रहे हैं कि आपको भगवान के विषय में बताना चाहिए। ऐसी दूसरी दूसरी चीजें जो आपने बताई हैं, उससे कभी भी भक्तों को संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है, और यदि जब हमारे कार्य से भक्त और भगवान प्रसन्न नहीं होते तो हमारे हृदय में कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। तो आपको भगवान के विषय में बताना चाहिए था, अब आप भगवान के विषय में बताओ। मतलब अब आप एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें कोई मल न हो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, यानी उसके अंदर कोई गंदगी ना हो। गंदगी का मतलब क्या है कि जो आश्वासन दिए ना तुमने, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सब भौतिक आश्वासन है। ये ऐसे हैं कि अब जीव क्या करता है, धर्म क्यों करता है, अर्थ प्राप्त करने के। और अर्थ क्यों प्राप्त, यानी धर्म कर रहा है कि उससे उसको धन प्राप्त हो, कि भगवान की भक्ति करें, भगवान मुझे धन दो, सुख दो, अर्थ मतलब भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के। और अर्थ किस लिए, काम इच्छा को पूरा करने के लिए ये प्राप्त हो। अगर धन मिलेगा तो उससे अपनी काम इच्छा, और वो पूर्ण करने के बाद भी संतुष्टि नहीं तो फिर तथाकथित मोक्ष यानी सायुज्य मुक्ति की, ब्रह्म में लीन हो जाना, मतलब ये संसार में संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही है तो चलो ठीक है मैं भगवान ही बन जाता हूँ। यानी कि ये कैसा मोक्ष है कि आप एक लड्डू की, मतलब एक लड्डू आपको मिल रहा है और बोलो नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे लड्डू नहीं अच्छा, मैं तो लड्डू की प्लेट खाऊंगा। यानी कि खुद भौतिक इंद्रियों से संतुष्टि नहीं होनी है, मैं अब भगवान बनना चाहता हूँ। तो ये सब जो बताया ना आपने, वो सब तो शरीर और मन को प्रसन्न करने के लिए, परंतु क्या शरीर और मन को प्रसन्न करने से कभी आत्मा संतुष्ट हो सकती है? इसीलिए भागवतम में, जो भागवतम है उसमें क्या कहा गया कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परम, कि ये धर्म ऐसा धर्म इसमें बताया गया है जिसमें कोई कैतव नहीं है। और इसमें खाली क्या बताया गया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्च एव नवलक्षणम, कि भगवान की भक्ति के ये नव लक्षण हैं और यही आपको करने हैं। भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, श्रवण करना है, स्मरण करना है, भगवान की सेवा करनी है और अपने आप को दास्य समझकर आत्मनिवेदन करना है, यही भक्ति है। परंतु बाय चांस अगर कोई भक्ति के नियमों का पालन करता है और भक्ति के नियमों का पालन करने से वो इतना उन नियमों में अंदर गिर जाता है, बहुत ज्यादा उनको भक्ति में ही वो लग जाता है और इसके कारण उसकी जो भौतिक धर्म है उनके पालन में कुछ चूक रह जाती है। यानी कि फिर वो, अब जाहिर सी बात है एक बंदा दो दो चीजों को पूरा टाइम नहीं दे सकता, या तो वो भक्ति परफेक्टली करेगा या तो फिर है ना भौतिक संसार को सही तरह से टाइम देगा। अब वो भक्ति में अंदर चला गया है तो बहुत सारी भौतिक ऐसे हमारे कर्तव्य हैं जिनमें उसके जिनके पालन करने में चूक हो जाती है तो एक अपराध लगता है। मतलब वो अपने भौतिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो फिर एक अपराध हुआ ना, क्योंकि वो नियत कर्मों को सही तरह से पूरा नहीं कर रहा। तो भगवान कहते हैं 18.66 में क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो, कि तुम अगर अपने धर्मों को छोड़कर भी मेरी भक्ति कर रहे हो और धर्मों का पालन सही तरह से अपने कर्तव्यों का नहीं कर रहे हो तो अपराध अगर लगेगा तो मैं बैठा हूँ ना, मैं आपके अपराधों को क्षमा कर दूँ। तो इट्स ओके, अगर हम भक्ति अच्छी कर रहे हैं और धर्म का पालन सही थोड़ा सा अगर चूक रह जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि बोलो कि बस अभी दीदी ने बोल दिया है कि रहने दो बाकी सारे काम है, नहीं। हम अगर करते हैं तो होता है कभी कभी कि हम अपने भौतिक कर्तव्यों को अच्छी तरह से पालन नहीं कर पाते हैं, तो भगवान कहते हैं मैं बैठा हूँ, मैं आपके अपराधों को नष्ट कर दूंगा, मैंने जो मेरे पास आएगा मैं उसे मोक्ष प्रदान करूंगा। लेकिन अगर किसी ने सब कुछ छोड़कर भक्ति स्टार्ट की, अब दूसरे धर्मों को सही तरह से पालन नहीं कर रहा है, भक्ति शुरू कर दी, परंतु किसी कारणवश भौतिक भोग की आसक्ति जो कि जन्म जन्मांतर से हृदय में है, उसके कारण वो भक्ति में परिपूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता
और अब देखो भक्ति में वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, सही तरह से नियमों का पालन नहीं कर पा रहा है, और भौतिक जो उसके कर्तव्य है वो उसने पहले से ही छोड़ दिए। यानी कि अब सिचुएशन क्या है कि भौतिक धर्म पहले छूट गया, भक्ति हो नहीं पा रही है। तो या तो अब भक्ति छूट गई है या फिर ये शरीर छूट गया और भक्ति की परिपूर्णता प्राप्त नहीं की, मतलब भक्ति में भी कंप्लीट सिद्धि नहीं प्राप्त हो रही है और भौतिक धर्म तो वैसे ही छोड़ दिए। तो अर्जुन भी ऐसा प्रश्न पूछता है भगवान से। अर्जुन कहते हैं 6.38 में अत्यंत ही सुंदर प्रश्न है। अर्जुन कहते हैं कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। हे कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। यानी कि अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि देखो जिस तरह एक बादल होता है, अब दो बादल के समय पीस हो जा रहे हैं, एक साइड पर बहुत बड़ा बादल है और दूसरा छोटा है, उसमें से एक छोटा पीस बादल का सोचता है कि मैं जाकर उस बड़े बादल के पास पहुंचूंगा, वहां पर मुझे ज्यादा मजा आएगा। लेकिन अब ये छोटे वाले बादल का उसने साथ छोड़ दिया, ठीक है, और आगे बढ़ रहा है बड़े वाले बादल को स्पर्श करने के लिए, लेकिन बड़े वाले बादल तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाता है क्योंकि हवा आई और उसने उसको बादल को नष्ट कर दिया। अब वो ना अपने का रहा ना वो बड़े वाले बादल का रहा। तो अर्जुन भी बोल रहे हैं कि हम अपने स्वधर्म को त्याग दें और भक्ति भी पूरी तरीके से नहीं करें, फिर तो छिन्न भिन्न बादल की तरह ना उधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, ना हमें भौतिक संसार में ही कोई कीर्ति प्राप्त होगी और ना ही हम आध्यात्मिक संसार में उन्नति कर पाएंगे। फिर अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और वास्तव में भक्तों, अगर हम थोड़ा सा भी गंभीर हो जाएं, थोड़ा सा गंभीरता से कोई भी नया भक्ति यदि सोचेगा तो उसके हृदय में यह प्रश्न अवश्य अवश्य आएगा कि जब से मैं भक्ति में आया हूँ सारा दिन बस ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। चार नियम पालन तो चलो समझ में आते हैं, आज तो हर एक चीज पे पाबंदी है, नूडल्स नहीं खा सकते, स्पगेटी नहीं खा सकते, पिज्जा नहीं खा सकते, यहाँ तक कि साबूदाना मशरूम कुछ भी नहीं खा सकते, ये नहीं देख सकते, वो नहीं देख सकते, देख रहे हैं कि कोई गलती कर रहा है सीनियर डिवोटी है परंतु विनम्रता की आज्ञा के कारण कुछ बोल भी नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते, सारा दिन केवल नियमों का पालन, सारी इंद्रिय तृप्ति बंद। तो फिर करूं क्या, जिस जिस काम में मजा आता था वो सब तो बंद करा दिया, रबर बैंड लगाकर सील कर दिया। और एक और मुसीबत के समस्त शिक्षा का एक ही सार है कि भगवान के पवित्र नाम में रस का आस्वादन करो, परंतु हरि नाम में तो रस मिल ही नहीं रहा है, जहाँ पर रस मिल रहा था वो सब तो बंद करा दिया, अब जहाँ रस आ ही नहीं रहा है तो बोलते हैं चखो चखो, अरे चखने से तो कुछ आ ही नहीं रहा है, क्या खाऊं क्या चखूं किस में टेस्ट लूं, और मुश्किल से तो मैं अपनी 16 माला कंप्लीट करता हूँ, जैसे एक बोझ सर से उतर रहा हो। क्या परिस्थिति हो गई है, शुरू में इतना लालच दिखाया कि भक्ति में सुख है, भक्ति में आनंद है, सारा संसार को छोड़ा और फिर वो लालच भी प्राप्त नहीं हुआ, कोई स्वाद नहीं आ रहा है, जो हाथ में था वो भी चला गया और जो प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा था वो भी नहीं मिल रहा है। अगर हृदय पर हाथ रखकर सोचें तो हम सबको कभी ना कभी ऐसा अनुभव अवश्य ही होता है। तो क्या इसका मतलब है कि हमने कुछ गलती की, कि हम ना आध्यात्मिक राह के बने और ना ही भौतिक? तो भक्तों, आप सबके लिए मैं आज बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। वो कोई और अगर किसी के मन में इस तरह का कभी कोई विचार आता है तो मैं आपको ये निवेदन करूंगी कि श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम स्कंद के पांचवें अध्याय के श्लोक नंबर 17, 18 और 19 को बार 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 पढ़ें। जब भी ऐसा लगे उसको बार बार पढ़ना चाहिए। और हमारे संस्थापक आचार्य, ये जो हमारा संस्था, ये जो हमारी परंपरा है, उसके प्रथम गुरु के प्रथम शिष्य यानी कि हमारी जो परंपरा है वो ब्रह्म नारद गौड़िया संप्रदाय कहलाती है। और उसके भगवान के प्रथम शिष्य हैं ब्रह्मा जी, और उन पर वो प्रथम गुरु अब बने, और प्रथम गुरु के प्रथम शिष्य नारद जी वो बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? नारद। वास्तव में भक्तों, जो बोल रहा है ना उसकी बहुत महत्व, उसका बहुत महत्व होता है। और नारद मुनि अपने से कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो उन्होंने ब्रह्मा से सीखा और ब्रह्मा जी ने जो कृष्ण से सीखा, यानी कि आज प्रथम जो आचार्य हैं, जो मनुष्य के जो प्रथम आचार्य हैं, जिन्होंने व्यास देव जी को ज्ञान दिया, वो देवर्षि नारद। जानते हो नारद का क्या मतलब है? नारक कहते हैं नारायण को, और द का मतलब होता है दिलाने वाला। जिस तरह हम बोलते हैं ना वरद, वरद का मतलब होता है वर देने वाला, उसी तरह नारद का मतलब होता है नारायण को दिलाने वाला। आज कोई साधारण व्यक्ति बात नहीं कर रहा है, वो देवर्षि बात कर रहे हैं, जिनकी बात को यदि हम समझ लेंगे और गंभीरता से उसको अपने जीवन में उतारेंगे तो हमें अवश्य भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और वो क्या कह रहे हैं? त्यक्त्वा स्वधर्मम्। त्यक्त्वा अर्थात त्याग के, स्वधर्मम् अर्थात धर्म को। जिसने स्वधर्म को त्याग, स्व मतलब मेरा, जिसने अपने भौतिक धर्म को त्याग दिया। अष्टम रूपा जी बोलते हैं एक मनुष्य के बहुत सारे धर्म होते हैं, ऐसा नहीं है केवल माता पिता कुटुंब या समाज या देश के कर्तव्य होंगे, परंतु अनेकानेक देवताओं के कर्तव्य हैं हमारे ऊपर, क्योंकि देवताओं से हमें बहुत कुछ मिल रहा है। और पशुओं के कर्तव्य हैं, क्योंकि पशुओं के द्वारा भी हम दूध हमें प्राप्त हो रहा है, अन्न प्राप्त हो रहे हैं। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, कवियों ने, बहुत दार्शनिकों ने हमारे ऊपर इतने सारे कृपा की है। तो एक मनुष्य के ऊपर बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, लेकिन आज शास्त्र हमें ये बता रहा है कि आपके कर्तव्यों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है। तो नारद मुनि बता रहे हैं त्यक्त्वा स्वधर्मम्, कि सारे धर्मों को त्याग कर। अब त्याग किया परंतु किस लिए? जैसे गोपियों के बारे में, गोपियों ने भी अपने सारे कर्तव्य त्याग दिए, है ना, माता का कर्तव्य, पति का कर्तव्य, घर बार का कर्तव्य, समाज का कर्तव्य सब त्याग कर वो भगवान की सेवा करने के लिए चली गई। परंतु आज कोई नहीं कहता कि गोपियों ने इतना गलत कार्य किया। बड़े बड़े महान संत आचार्य जो हैं वो उन देवियों का, उन गोपियों का गुणगान करते हैं। तो वास्तव में स्वधर्म को त्यागने के प्रतिक्रिया क्या है, मतलब आप किसके कारण अपने स्वधर्म को त्याग रहे हो? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी व्यक्ति की प्रगति हो रही है या पतन हो रहा है, इसका निश्चय किस बात से होगा? एक व्यक्ति है जो एक साधारण व्यक्ति अपने स्वधर्मों का, स्वधर्म को पालन कर रहा है, उसकी प्रगति हो रही है या पतन हो रहा है, इसका पता कैसे चलेगा? कि जैसे एक व्यक्ति है, उसके ऊपर अपने परिवार का धर्म है, जैसे माता पिता का कर्तव्य है, घर का, समाज का कर्तव्य है, वो अपने सारे कर्तव्यों को छोड़ देता है। किसके लिए? जब वो एक लड़की से प्रेम करता है और वो भाग जाता है उसके साथ, क्योंकि वो उसे प्राप्त करना चाहता है। किस लिए? इंद्रिय तृप्ति के लिए, है ना, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। यदि उसने घर बार, अपने अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग दिया, तो इसका मतलब है कि उसका पतन हो रहा है, क्योंकि एक निम्न वस्तु की प्राप्ति करने के लिए उच्च कर्तव्य को छोड़ देना ये पतन है। परंतु वही व्यक्ति यदि देश की सेवा करने के लिए फौज के साथ भर्ती हो जाता है और युद्ध करता है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी उसे क्या कहा जाता है, वीर गति को प्राप्त हो गया, शहीद हो गया, है ना। तो ये प्रगति है, क्योंकि उससे उससे कोई भी ये नहीं कहेगा कि उसने गलत कार्य किया, बल्कि उसको गोल्ड मेडल मिलेंगे, है ना। तो मतलब उसने क्या किया, एक उच्च कर्तव्य को पालन करने के लिए निम्न कोटि का, यानी अब ऊंचा क्या हो गया, देश की सेवा, और निम्न क्या हो गया, घर का कर्तव्य। तो निम्न कोटि का कर्तव्य त्यागा और उच्च कोटि के कर्तव्य को करने के लिए, इसका मतलब है उसकी प्रगति हुई। ठीक। अब सबसे बड़ा धर्म जो है वो हमारा कौन सा है, भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ना, है ना। बाकी सारे कर्तव्य अगर आप 100% पूरे करते हो, परंतु भगवान के साथ अपने संबंध के कर्तव्य को पूरा नहीं करते हो, तो फिर वो आपका अत्यंत ही तुच्छ और निम्न कोटि का धर्म है। लेकिन यदि भगवान की सेवा करने के लिए आपका कोई भौतिक कार्य पूरा नहीं हो रहा है, तो मतलब आपकी प्रगति हो रही है। इसका उदाहरण मैं आपको ऐसे दूं कि भरत ने भगवान श्री राम की सेवा करने के लिए माँ का कर्तव्य त्यागा। माँ बोल रही थी कि आपको भगवान की सेवा नहीं करनी है बल्कि राज्य भोगना है, लेकिन उन्होंने माता का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना चाहते थे। बलि महाराज ने वामन देव को प्रसन्न करने के लिए अपने गुरु का कर्तव्य त्यागा। गुरु बोल रहे थे कि नहीं, इसको नहीं देना आपको ना 3 पंख धरती, लेकिन उसने फिर भी, महाराज बलि ने अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन नहीं किया। उसी प्रकार प्रहलाद ने भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए अपने पिता के आदेश को त्यागा। पिता बोल रहे हैं कि तुमको क्या बोलना है, हिरण्यकशिपु की जय, परंतु प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, जय तो केवल मेरे श्री हरि की ही करूंगा और किसी की नहीं करूंगा। तो इसका मतलब ये है, आज तक जिन जिन ने भी उच्च धर्म का पालन करने के लिए निम्न धर्म का परित्याग किया है, उनका गुणगान हो रहा है, शास्त्रों में उनके विषय में बताया जाता है, बड़े बड़े योगी, तपस्वी, ध्यानी सब उनके विषय में बात करते हैं। भले कोई कितना ही भौतिक धर्म का पालन करने वाला हो, लेकिन उनका गुणगान कर रहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 18.66 में कि धर्म का त्याग करने से पाप तो लगेगा, स्वाभाविक है, परंतु सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम रजा, फिर भी मेरी शरण में आओ, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचम, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। और आज हमें नारद मुनि क्या सिखा रहे हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मम, अपने स्वधर्म को त्यागो, किसके लिए, चरणम भुजम हरे, किसके लिए, चरणम भुजम, यानी भगवान के चरणों की सेवा के लिए अगर किसी ने अपने धर्म को त्यागा है, स्वधर्म का परित्याग कर दिया है, परंतु भजन अपकोथपति ततो यदि, भजन अपक्व, मतलब उसने त्याग तो दिया अपने स्वधर्म का, परंतु उस भगवान के भजन को भी पूरी तरह से अच्छे तरीके से नहीं कर पाया। अपक्व मतलब कि उसका भजन परिपक्व अवस्था में नहीं प्राप्त कर पाया, किसी भौतिक इंद्रिय तृप्ति की लालच ने उसके पद को भ्रष्ट कर दिया और वो भक्ति में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सका। भजन अपक्व अथ पति तत्व यदि, अथ पति तत्व यदि, इसका मतलब ये है कि यदि उसका भक्ति से पतन हो गया, यानी कि उसने पहले क्या किया, त्यक्त्वा स्वधर्मम, अपने धर्म को त्यागा, किसके लिए, चरणम भुजम हरे, हरि की भक्ति को प्राप्त करने के लिए, उनके चरण कमलों की सेवा करने के लिए, भजन न पक्को था, लेकिन फिर भी उसका भजन परिपक्व नहीं हुआ,
और प्रत्येक तत्व यदि और वो उसका पतन हो जाता है तो नारद मुनि आश्वासन दे रहे हैं, यत्र कवा भद्रम अभूदमुष्य किम, फिर भी उसकी कोई हानि नहीं हो रही, उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उसका कोई घाटा नहीं हो रहा है। यदि वो भगवान की भक्ति करने के लिए अपने धर्म स्वधर्म का परित्याग कर रहा है लेकिन भक्ति में भी उन्नति नहीं कर पा रहा, फिर भी उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और आगे कहते हैं, को वार्थ आतो, भले उसने बहुत अच्छी तरह के तरीके से अपने सारे धर्मों का, सारे नियमों का पालन किया हो, अच्छी तरह से सब कुछ अपने सारे कर्तव्यों का, देश का धर्म, घर का धर्म, जाति का धर्म, समाज का धर्म, ये धर्म वो धर्म, टैक्स टाइम पर दिया और हर कार्य सही तरह से किया, परंतु अभजताम स्वधर्मम, वो अपने स्वधर्म को पूरा कर रहा है लेकिन यदि वो भगवान का भजन नहीं कर रहा है, भगवान के प्रति अपने संबंध को पुनः स्थापित नहीं कर रहा है, यदि वो अपने वास्तविक स्वधर्म यानी अपनी आत्मा के धर्म को पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसका जीवन बेकार हो जाएगा, कोई भी फायदा नहीं हुआ। यानी हमने यही बात को 1.2.8 में पढ़ा था, धर्म स्वनिश्चित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुय नोत्पादयेत् यदि रतिम क्षम एव हि केवलम्। अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियों को यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षित उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, यदि आप अपने सारे कर्तव्यों का पालन कर रहे हो, सारे धर्मों को अच्छी तरह से निभा रहे हो लेकिन भगवान के प्रति आपका कोई आकर्षण निर्माण नहीं हो रहा है, भगवान की कथाओं के प्रति, भगवान के नाम जप करने के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति, भगवान के चरण कमलों में समर्पित होने के प्रति यदि आपकी इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही है तो नोत्पाद ये यति रतिम श्रम एव ही केवलम, केवल गधे की तरह बोझ को उठाया है इन समस्त कर्तव्यों को पालन करके कोई फायदा नहीं, श्रम एव ही केवलम, केवल और केवल मेरी श्रम किया है अपने, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। क्योंकि जीव सनातन है, सनातन जीव का सनातन कर्तव्य है। 1.2.3 में बताया था, सॉरी 6 में, सवय पुंसाम परो धर्मो यतुर्भक्ति अदुक्षति अहितुकिया प्रतिहिता ययात्मा सुप्रसीदति। हम आत्मा है और आत्मा भगवान की पराशक्ति है और पराशक्ति परा प्रकृति का एक परा धर्म है और वो क्या है, भगवान की भक्ति करना। और यदि कोई भगवान की भक्ति नहीं करता है तो वो कभी संतुष्ट नहीं रह सकता है, चाहे वो अपने समस्त कर्तव्यों का बहुत ही अच्छे तरीके से पालन क्यों न करे। इसलिए आज नारद मुनि बता रहे हैं कि यदि तुमने अपने समस्त कर्तव्यों का पालन नहीं किया और अपनी वास्तविक कर्तव्य सनातन धर्म का पालन किया है तो आपकी कोई हानि नहीं होगी, और यदि समस्त धर्मों का पालन किया लेकिन अपने सनातन धर्म, जीव का जीव सनातन है और उसका सनातन धर्म है भगवान की भक्ति करना, यदि उस धर्म का पालन नहीं किया तो तुम्हारे इस जीवन का कोई लाभ नहीं होगा। और यदि तुमने भक्ति में भी परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं किया तो भी तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 40 में, नेहाभिक्रम नाशोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि यदि इस नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, वास्तविक धर्म जो तुम्हारा है भगवान के साथ अपने संबंध को निर्माण करने के लिए, जो तुम्हारा वास्तविक धर्म है उस धर्म के प्रति यदि तुमने तनिक भी उसमें अगर उन्नति की है, जरा सी स्वल्पम अप्यस्य अत्यंत ही अगर थोड़ा सा भी उसमें तुमने प्रगति की है तो फिर आपको महाभय से त्रायते महतो भयात्, महाभय से आपकी रक्षा होगी। और जानते भक्तों महाभय क्या है, इस संसार में यदि कोई महाभय है तो वो है मृत्यु, और मृत्यु भी एक बार नहीं வாரம் வாரம் மிருத்யு, புனரபி ஜனமம் புனரபி மரணம் புனரபி ஜன்னி ஜடராசயனம், ये सबसे बड़ा भय है। जीव आता है संसार में, पूरी जिंदगी मेहनत करता है और मृत्यु एक क्षण में आकर उसकी सारी मेहनत को पानी फेर के चली जाती है। सब कुछ उससे, जो कुछ उसके पास है वो सब उससे छीन लिया जाता है। उसका नाम, यश, उसकी कीर्ति, उसका घर, उसकी संतान, यहाँ तक कि उसने जो भी धन दौलत सब कुछ कमाया होता है, सब कुछ छीन जाता है। केवल रहता है तो जो उसने भगवान की भक्ति की होती है ना, वो ही रहता है। वरना तो फिर और कुछ भी, बहुत बहुत राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, बहुत बहुत जिसने कमाया हो, हिटलर हो या फिर या कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति हो जिसने अपने धर्मों का बहुत ही अच्छे तरीके से पालन भी किया हो, लेकिन यदि वो बारंबार इस जन्म मरण के चक्कर से नहीं बच पाया तो उसके इन समस्त धर्म के पालनों का कोई अर्थ नहीं, सब अर्थविहीन। तो आज नारद मुनि बता रहे हैं, क्या फायदा यदि आप अपने कर्तव्यों का पूरा पालन कर रहे हो लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो। वास्तव में ये जो संसार है ना, वो एक जेल की तरह है। आप चाहे किसी भी स्थिति में हो, यदि आप इस संसार के किसी भी लोक में हो तो वो जेल ही है। जैसे यहाँ का तो पता नहीं, लेकिन अभी मैंने लेक्चर सुना तो उसमें बताया, अमेरिका में एक ऐसी जेल होती है कि उसमें क्लासेस होती हैं, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास की जेल, है ना। ए क्लास की जेल कैसी होती है, जो बड़े बड़े पॉलिटिक्स होते हैं, जो बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं उनके बच्चे वगैरह जो होते हैं ना, वो ऐसी जेल में जाते हैं। उसमें क्या होता है, एसी होता है, एलसीडी होता है, अच्छा बेडरूम होता है, टीवी रखा होता है, मतलब अच्छे तरीके से वहां पर रहते हो आप। लेकिन वो होती जेल है, लेकिन सुविधाएं कुछ ज्यादा होती हैं। उसके बाद बी क्लास की जेल होती है, उसमें क्या होता है, जैसे मतलब इतना अच्छा वो नहीं होता है, वातावरण नहीं होता है, बस एक है ना बल्ब जल रहा होता है, 40-50 लोग वहीं पर होते हैं और उनसे काम भी बहुत करवाया जाता है। उसके बाद में उनको खाना भी दिया जाता है और है ना, मतलब ऐसा ही उनके साथ व्यवहार किया जाता है, जैसे प्रियताप। लेकिन एक सी क्लास की जेल होती है, वो जैसे अब बी क्लास की जेल में कौन होते हैं, जैसे छोटे छोटे पॉकेट मार होते हैं या फिर जिसने चोरियां वगैरह की होती हैं, इस तरह के लोग होते हैं। और जो सी क्लास की जेल होती है ना, वो बहुत निम्न कोटि के जितने होते हैं ना, जिसमें बहुत खूंखार जो कैदी होते हैं ना, जो निम्न कोटि के होते हैं, जिन्होंने बहुत सारे मर्डर किए होते हैं, बहुत सारे रेप किए होते हैं, जो मतलब दरिंदे टाइप के होते हैं, उनको उसमें डाला जाता है। और उसकी दशा कैसी होती है, उसमें बिल्कुल अंधेरा होता है, दिन बाहर दिन हो रहा है, रात हो रहा है, कुछ उनको पता नहीं। एक छोटा सा होल बना हुआ होता है, वो भी बंद होता है, फिर खाना खाने के लिए उसमें से उसको डाल के दे दिया जाता है और उनको कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाती। उसी तरह से हम जब अच्छे कार्य करते हैं तो हमें एक ग्लास की जेल में डाल दिया जाता है, यानी स्वर्ग लोक में भेज दिया जाता है, पुण्य कर्म है ना। फिर वहां पर अच्छी सुविधा होती है, अप्सराएं होती हैं और मदुरा पान होता है, अच्छा वहां पर नंदन कानन वो होता है, एक बाग होता है, और जो हमारी इच्छाएं होती हैं भौतिक इंद्रिय तृप्ति की, वो सारी वहां पर पूरी होती है। और जिन्होंने थोड़े काम अच्छे कार्य किए होते हैं, स्वधर्म का पालन किया होता है, उनको भौतिक संसार में आना पड़ता है। वहां पर ये ना बी क्लास की जेल है और यहाँ पर तीन ताप सताते हैं, कष्ट होते हैं, लेकिन फिर है तो जेल। और उसके बाद जो बहुत ही घृणित कार्य करते हैं उनको पशु योनि में डाल दिया जाता है, अर्थात नरक में, है ना, नरक के उधर डाल दिया जाता है। परंतु वास्तविक कार्य क्या है कि आप ऐसे धर्म का पालन करो। आपका कार्य क्या है जीव का, कि जीव इस तरह के धर्म का पालन करे कि वो उन समस्त जेलों से छूटकर अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करे, यानी धर्मस्य या पवर्गस्य, धर्म का पालन किस लिए करे, इस पवर्ग वाले संसार में आने के लिए नहीं, बल्कि अपवर्ग वाले संसार में जहाँ पर कोई दुख नहीं, कोई असंतुष्टि नहीं, केवल आनंद ही आनंद है भगवान के लोक को प्राप्त करने के लिए। तो वास्तविक धर्म का पालन तभी होता है जब हम इन समस्त जो भी कैद है, समस्त भौतिक बंधन है उनसे छूट जाए। और अपनी छूटना ही काफी नहीं है, छूटने के बाद आपको अपनी वास्तविक स्थिति को भी प्राप्त करना है। जैसे मैं आपको छोटी सी यहाँ पर एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर कोई इंडियन है और उसको पाकिस्तानी जेल में बंद कर दिया गया, और वो पाकिस्तानी जेल वाले यदि उसको जेल से छोड़ भी दें, चलो ठीक है उसका टाइम खत्म हो गया और जेल से वो निकल गया, तो उसको क्या लाभ होगा? क्योंकि यहाँ पर तो ना उसका घर है, ना उसके रिश्तेदार है, ना ही उसका कोई अपना है, उसका कोई प्रेमी नहीं है, तो ऐसी आजादी का क्या लाभ? लाभ तो तब है जब उसे उसका वास्तविक स्वरूप मिले, जहाँ पर ऐसे घर में जहाँ पर उसका प्रेम करने वाले सब हो, जहाँ पर उसकी वास्तविक स्वरूप उसका वास्तविक नाम उसको मिले, वास्तविक स्थिति को प्राप्त हो। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूपेण व्यवस्थिता। मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि आपको मोक्ष मिल जाए, मुक्ति का मतलब है कि आप अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाओ। इसलिए नारद मुनि बता रहे हैं कि यदि आप स्वधर्म का परित्याग भी कर देते हो और भक्ति में भी आगे नहीं बढ़ रहे हो तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अभी नारद मुनि बोल रहे हैं वेद व्यास जी को कि आप ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसके अंदर भक्ति के अतिरिक्त और कुछ न हो। निर्मत शरणम सताम धर्म प्रोजित कै तवोत्र परमो निर्मत सराराम सताम। कि ये ऐसा धर्म भागवत ग्रंथ में ऐसा धर्म बताया जाएगा जिसमें कोई मल नहीं है, कोई कहतव नहीं है, और वो किसके लिए है? निर्मत सराराम, जिसके हृदय में लेश मात्र भी मत्सर ना हो, जो संत हैं ऐसे परमहंसों के लिए है। ये भागवतम महापुराण कोई साधारण व्यक्तियों के लिए नहीं। तो यहाँ पर हमेशा लगता है फिर हम पढ़ने तो फायदा, तो लेकिन फिर भी भागवतम की एक और महिमा बताते हैं क्या? नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवा। यदि आपके अंदर मत्सर हो, वैसे तो ये भागवतम किसके लिए है? निर्मत्सराणाम के लिए है, लेकिन यदि मत्सर से भरा हुआ व्यक्ति भी है, वो भी नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवा, यदि हर रोज इस भागवतम का सेवन करेगा, थोड़ा थोड़ा करके इसको समझने का प्रयास करेगा, सच्चे हृदय के साथ श्रद्धा के साथ इसको श्रवण करेगा, भले हमारे अंदर योग्यता नहीं है, हमारे अंदर बुद्धि भी नहीं है कि हम इन पवित्र वचनों को समझने के अधिकारी भी नहीं है, परंतु ये आश्वासन है कि नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवा। यदि हम दवाई की सूरत में इसको लेंगे ना, जैसे हमारे अंदर भाव रोग है, हृदय के अंदर बहुत घृणित वासनाएं हैं जो कि इस संसार का रोग है, लेकिन यदि हम आहिस्ता आहिस्ता भागवतम को श्रवण करते जाएंगे तो समस्त अभद्र नष्ट हो जाएंगे, और जो रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है ना वो स्वतः हो जाएगी। लेकिन किसी न किसी तरह से हमें भागवतम के संपर्क में आना है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि केवल भागवतम पढ़ना काफी नहीं है या श्रवण करना, लेकिन भागवत पढ़िए भागवत स्थाने, यानी कि एक किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो आपको एज इट इज बताए, जो एज इट इज आचरण करे। वास्तव में तो श्रील प्रभुपाद जी ही ऐसे महाभागवत हैं इस कलयुग में, केवल वही हमें श्रीमद् भागवतम का सही सही आस्वादन करा सकते हैं, और उनके द्वारा यदि हम पढ़ रहे हैं तो समझो एकदम सही तरह से उस श्रीमद् भागवतम का हम एज इट इज आस्वादन कर रहे हैं। तो हमारे मन में भी कभी कभी ऐसे संशय आते हैं, लेकिन यहाँ हमें ये आश्वासन दिया जा रहा है कि ऐसे संशयों को अपने मन में कभी नहीं लाना चाहिए कि आस्वादन नहीं हो रहा है। अब आस्वादन क्यों नहीं हो रहा है? भगवान के पवित्र नाम में आनंद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इतने सारे अनर्थों से हृदय मलिन है, तो इसके कारण वो आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है भगवान के नाम में, भगवान की कथाओं में। परंतु धीरे 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 ये अनर्थ नष्ट होंगे। वास्तव में हमारी स्थिति क्या है? अब एक स्थिति के विषय में मैं आपको समझाऊंगी ना, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल, अर्थात आत्मा की एक अंधेरी रात। अब देखो होता क्या है, शाम को 6 बजे सूर्य अस्त हो जाता है और वही सूर्य सुबह को 6 बजे उदय होता है, लेकिन बीच में शाम को 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे का समय होता है, है ना। और उस समय का भी सेंटर होता है क्या, रात के 12 बजे। तो रात के 12 बजे में बहुत अंधेरा होता है, बहुत बहुत अंधेरा होता है, दिखता नहीं कुछ भी। लेकिन वो क्या है, क्योंकि बीच की अवस्था है, उसके बाद क्या होने वाला है, सुबह 6 बजने वाले हैं और सुबह 6 बजे में फिर से सूर्य उदय होगा। उसी प्रकार से जब एक व्यक्ति भगवान की भक्ति के लिए आगे बढ़ता है तो क्या करता है, विषय भोग के सूर्य का अस्त कर देता है। जितने भी विषय भोग उसको आकर्षित जिनकी ओर हो रहा होता है, जो भी हम बोलते हैं भक्ति में ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये सारे विषय भोग की जागृत अवस्था है ना, जो हमें आनंद दे रहे होते हैं। लेकिन विषय भोग के सूर्य का तो अस्त हो गया, लेकिन अभी आध्यात्मिक सूर्य उदय होने वाला है, कृष्ण भक्ति का सूर्य उदय होने वाला है, कितने बजे, सुबह को 6 बजे, और अभी क्या बज रहा है, रात के 12 बज रहे हैं। तो ये मतलब विषय भोग का सूर्य अस्त हो गया, कृष्ण भक्ति का सूर्य अभी उदय नहीं हुआ है, होने वाला है, तो इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि शायद हम ना इधर के रहे ना उधर के, और हमें ऐसा लगता है कि हमें केवल अंधकार ही दिख रहा हो। तो इस समय क्या करना चाहिए, तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि उस समय आपको 3 चीजें करनी चाहिए, क्या, उत्साह, निश्चयान, धैर्य। जब आप भक्ति में जाते हो ना, तो ये आपके पास बड़ा बल देती हैं ये 3 चीजें। पहला है उत्साह, दूसरा है निश्चय, और तीसरा है धैर्य। उत्साह मतलब इतना उत्साह के साथ कार्य करना है, भले आनंद नहीं आ रहा है, जब करना है एनी हाउ, भले ही सुस्ती हो रही है लेकिन प्रभात साधना करनी है, एनी हाउ करनी है, भले ही मेरी इंद्रियों को अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन वास्तविक मेरा कल्याण इसी से होगा, यही सोच, एकदम श्रद्धा होनी चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए कि ये कार्य करने से ही मेरे इस जन्म को मैं सफल करूंगी। बाकी पूरा दिन में भले ही कितने ही अपने धर्मों का पालन करती रहूं, भौतिक धर्मों का, लेकिन उससे मेरा कोई फायदा नहीं, वो मैं कर रही हूं क्योंकि मेरे नियत कर्म है, मेरी ड्यूटीज है, लेकिन वास्तविक कल्याण, इतना उत्साह और इतना निश्चय होना चाहिए इस बात पर कि मैंने जो कुछ भी मैं त्याग कर रही हूं ना कृष्ण भक्ति के लिए, वास्तव में त्याग तो कुछ सही नहीं है, जो कुछ त्यागा है ना वो केवल कचरा है, मल है, वो जो भौतिक वस्तुओं, इंद्रिय तृप्तियों और ये जो वासना, काम वासना को जो त्याग रहे हैं वो तो सब गंदगी है। और भगवान की भक्ति में जब उसको छोड़ रहे हैं तो ये निश्चय हो कि हमने जो कुछ छोड़ा है वो केवल कृष्ण और गुरु को प्रसन्न करने के लिए छोड़ा है, तो एक सही मार्ग हमने अपनाया है, उसमें मेरा कभी कोई हानि नहीं हो सकती, मेरा कभी पतन नहीं हो सकता, अवश्य रक्षिभ है कृष्ण, कृष्ण मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, कृष्ण मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये उत्साह के साथ, इस निश्चय के साथ, और साथ में एक और बात है, वो है धैर्य। कभी धैर्य का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल कृष्ण कभी अवश्य प्रसन्न होंगे, वो दिन अवश्य आएगा मेरे जीवन में जब इस नाम में मुझे आनंद आने लगेगा, ये नाम मुझे संसार की हर वस्तु से ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। मुझे इस बात पर विश्वास रखना चाहिए, उत्साह और निश्चय के साथ हमें ये कार्य करना पड़ेगा, और एक दिन अवश्य ऐसा आएगा कि कृष्ण भक्ति का सूर्य उदय होगा। परंतु ये उत्साह, निश्चय और धैर्य कैसे आएगा, ये भी एक प्रश्न है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं चैतन्य महाप्रभु के मार्गदर्शन में। महाप्रभु कहते हैं कि भक्ति के लिए जो वस्तुएं आपको चाहिए, अर्थात उत्साह, निश्चय और धैर्य, उनको प्राप्त करने के लिए आपको 5 काम करने पड़ेंगे। साधु संग, नाम कीर्तन, मथुरा वास, भागवत श्रवण, श्री मूर्ति ने श्रद्धा र सेवा। सबसे पहले तो असक संग को त्याग कर भगवान के भक्तों का संग करना पड़ेगा। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो किसी की निंदा नहीं करते हैं, केवल भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं, भगवान के विषय में बता रहे हैं, भागवत और गीता के श्लोकों और श्रीमद् प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के विषय में आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत बातें बता रहे हैं और भाई हम भगवान के भक्त नहीं, जो एज इट इज बता रहे हैं वो साधु है। क्योंकि जो अपना मनगढ़ंत बताता है वो कभी भी आपको गलत लाइन में ले जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कहां से कब से स्टार्ट हुआ कुछ। तो अगर कल में ना कोई बोलते हैं इस तरह से कि हम जिस जगह पे जाते हैं ना ज्ञान सुनने के लिए, तो वो भी उसी भगवान की वही बातें बता रहे हैं। तो मैंने कहा क्या बता रहे? तो बोला बता रहे हैं कि आपको भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान के विषय में भगवान की भक्ति करनी चाहिए और इसी से जीवन का कल्याण होगा। तो मैंने कहा ये बताए कि भगवान कृष्ण है? तो बोला नहीं, भगवान कृष्ण को तो मानते ही नहीं है, मतलब विग्रह पूजा को नहीं मानते, कृष्ण की भक्ति नहीं करने को बोलते, कृष्ण की बात नहीं आती है लेकिन नाम यही बोलते हैं ब्रह्म। अरे जो तुम्हें तुम्हारे भगवान से, तुम्हारे कृष्ण से दूर कर देगा, जो तुम्हारे कृष्ण के स्वरूप से तुम्हें दूर कर रहा है, वो वही बात कहाँ बता रहा है? इसमें तुम्हें क्यों फर्क दिखता नहीं है कि वो तुम्हें, वो कृष्ण को नहीं मान रहा है, कृष्ण से घृणा कर रहा है, जो कृष्ण को प्रणाम नहीं कर रहा है, जो कृष्ण के रूप को नहीं मान रहा है, वो पता वही बात कहाँ बता है? तो साधु वही है जो भगवान के हर फेस को मानता है। तत्वदर्शी यही है, वही है जो भगवान के ब्रह्म स्वरूप को, भगवान के परमात्मा स्वरूप को, भगवान के साक्षात स्वरूप को मानता है, उसी की बात सुननी है। एक अधूरा व्यक्ति जो स्वयं जिसका ज्ञान पूरा नहीं है, वो तुम्हें क्या ज्ञानी करेगा, क्या भगवान की भक्ति में लगाएगा, क्या सुधारेगा? तो साधु संग और नाम कीर्तन, भगवान के पवित्र नाम का जप करना है। मथुरा वास यानी कि जो भगवान के दिव्य स्थान है उनमें जाना है, उनकी यात्रा करनी है और वहां पर बैठ के भगवान की भक्ति की साधना करनी है। और भागवत श्रवण, वास्तव में भक्तों जब हम भागवतम श्रवण करते हैं ना तो सारे कार्य हो रहे होते हैं। क्या? क्योंकि भागवतम श्रवण कर रहे हैं तो साथ में साधु संग भी हो रहा है। कैसे? श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ते हैं, नारद मुनि के विषय में पढ़ रहे हैं, वेद व्यास जी के विषय में पढ़ रहे हैं, ये सब साधु हैं। संग, अभी देखो संग भी दो तरह का होता है, एक तो वाणी संग होता है, दूसरा वापु संग होता है। लेकिन वाणी संग से करोड़ों गुना ज्यादा, सॉरी, वापु संग का मतलब होता है शरीर का संग। अब शरीर का संग से करोड़ गुना ज्यादा है वाणी का संग, क्योंकि एक साधु के शरीर का संग तो वो मच्छर भी कर रहा है जो कि उसको पीड़ा दे रहा है, परंतु वो वाणी का संग नहीं कर रहा है, इसलिए वापस से वो मच्छर ही बनेगा या फिर उससे भी निम्न योनि में जाएगा क्योंकि साधु को तंग किया। लेकिन यदि हम साधु की वाणी का संग कर रहे हैं, उनके वचनों को श्रवण कर रहे हैं, तो फिर उससे हमारा कल्याण होगा। तो यदि हम भागवतम श्रवण कर रहे हैं तो साधु संग हो रहा है, भागवतम श्रवण कर रहे हैं तो नाम संकीर्तन, नाम कीर्तन भी हो रहा है। कीर्तन का मतलब होता है कीर्ति को दोहराना, भगवान के पवित्र नाम की, नाम कीर्तन को दोहराना यानी कि भगवान के विषय में बोलना या फिर उनकी कीर्ति का बखान करना। तो श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कीर्तन दो तरह से होता है, एक हम जब भगवान के नाम को म्यूजिक के साथ गाते हैं और दूसरा जब उनकी नाम की महिमाओं को बढ़ाते, तो नाम कीर्तन हो रहा है। और मथुरा वास यानी कि भगवान कहते हैं मैं वहां पर मथुरा में नहीं रहता, मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता, मैं कहाँ रहता हूँ? मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ पर मिलकर मेरे भक्त गाते हैं, भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, मैं निश्चित रूप से वहां पर हूँ। और श्री मूर्ति तेरे श्रद्धार सेवा, वास्तव में ये जो भागवतम है वो भगवान का वांग्मय स्वरूप है, साक्षात भगवान है। तो यदि हम भागवतम श्रवण कर रहे हैं तो सारे कार्य हो रहे हैं और इसी से हमें निश्चय प्राप्त होगा, इसी से उत्साह होगा, उसी से धैर्य होगा। तो हमें सदैव भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि शुद्ध भक्तों से हमें भागवतम श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो, ताकि हम अत्यंत ही सरलता से भगवत भक्ति में प्रगति कर सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। हरे कृष्ण।